کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں, حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد. میں نے جب آج آنکھ کھولی تو دیکھا ایک غلام ہانپتا کانپتا اپنے آقا کے پاس دوڑتا ہوا آیا. اس کے آقا نے اس کو اس حال میں دیکھا تو بولا, تجھے کیا ہو گیا؟ وہ اپنی سانس درست کرتے ہوئے کہنے لگا, وہ آپ نے جو مجھے بھیجا تھا نا کہ میں دیکھ کے آؤں کہ کون یا صباحہ کی صدا لگا رہا ہے, تو وہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ تو امین تھا جو صفا پہاڑی پہ چڑھ کے تمام لوگوں کو پکار رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا بتوں کی عبادت چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کرو فلاح پا جاؤ گے, ورنہ وہ تو آگ سے ڈرا رہا تھا. کہہ رہا تھا اگر مان جاؤ تو سارا عرب تمہارا ہو جائے گا, اور اگر نہ مانے تو سخت عذاب کی دھمکی دے رہا تھا. میں نے دیکھا اس کا آقا یہ سن کے کچھ پریشان سا ہو گیا. پھر اس نے پوچھا لوگوں نے کیا کہا؟ غلام جھٹ سے بولا, جی کہنا کیا تھا, اس کے تو اپنے چچا اس کو ڈانٹنے لگے. بس لوگ سن کے اس کی باتیں پھر تتر بتر ہو گئے. مالک گہری سوچ میں چلا گیا. پھر بولا یہ کچھ اچھا نہیں ہوا, خدا جانے اب آگے کیا ہوگا. میں سمجھ گئی میرے نبی نے اب کھلم کھلا نبوت کا اعلان کر دی ہے, تمام قریش کو توحید کی دعوت دے دی ہے. اب بات ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی. میں نے آنکھیں بند کی اور اس بار جب کھولی تو میرے سامنے نقشہ ہی بدلا ہوا تھا. یہ کیسی چیخو پکار تھی! میں ایک طرف کو بڑھی تو ایسا دردناک منظر دیکھا. ایک نوجوان لڑکے کو مار مار کے ادھموا کر دیا گیا تھا اور رسیوں سے جکڑا ہوا تھا. اس کے قریب ہی ایک ادھیڑ عمر بوڑھا اور ایک عورت جو عمر رسیدہ اور کمزور بھی تھی, وہ بھی بندھے ہوئے تھے اور ان کو کسی نے شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہوا تھا. ایک آدمی ان کے قریب کھڑا ہوا کہہ رہا تھا, محمد کو برا کہو, کہو لات اور عزہ, میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. یہ تینوں مار کھاتے جا رہے تھے مگر ان کی زبان سے صرف کلمہ توحید ہی نکل رہا تھا. ان کے چہرے لہو لہان تھے, جسم لاغر تھے, ہر جگہ سے خون رس رہا تھا. ان کی حالت بہت بری تھی, یوں لگ رہا تھا کہ بس آخری سانسوں پہ ہیں. مگر کیا بات ہے کہ یہ ٹس سے مس بھی نہیں ہو رہے, ان کو کچھ اثر نہیں ہو رہا. پھر میں نے دیکھا مجھے دور سے اپنے نبی آتے دکھائی دیے. وہ جب قریب آئے اور انہوں نے یہ منظر دیکھا تو سخت دکھی ہو گئے, مگر ایسا لگتا تھا کہ وہ بے بس ہیں, ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, وہ کچھ نہیں کر سکتے. میرے نبی کا چہرہ اتر گیا, سخت دکھی ہو گئے. وہ باوجود چاہنے کے کیا کر سکتے تھے, ان ظالموں کے آگے ان کا کوئی بس نہیں تھا. मैंने सोचा ये कैसी बेबसी है। मेरे नबी ने बस इतना फरमाया, ए आले यासिर सब्र करो। यूं लगता था मेरे नबी से उनकी अजियत देखी नहीं जा रही। वो दिल गरिफ्ता होके बोझल कदमों के साथ वहां से रुखसत हो गए। ना जाने कितने दिन से ये सब कुछ हो रहा था। इसके बाद मैंने देखा एक मजबूत जिस्म वाला, ऊंचा लंबा, एक सरदार नुमा आदमी, तकब्बुर जिसके चेहरे से झलक रहा था। गुलाम से उसने कोड़ा पकड़ा और इस उम्र रसीदा औरत के जिस्म पर पूरी ताकत से जरबे लगाने लगा। कहाँ वो इतना कवी आदमी और कहाँ ये औरत जो ना सिर्फ कमजोर थी बल्कि बूढ़ी भी थी और पहले से जख्मों से चूर थी। मजीद मार सहने की इसमें ताकत तक नहीं थी, मगर कैसा सब्र था, कैसा हौसला था। इतनी मार खा के भी, जख्मों से चूर हो के भी कुछ बोल नहीं रही थी। वो सरदार गुस्से से पागल होके चीख रहा था, कसम खुदा की या तो तू मोहम्मद को बुरा कहेगी वरना तू एक खौफनाक मौत मरेगी। औरत ने ये सुना तो उसके बुतों को बुरा भला कहने लग गई। मैं इस कमजोर सी औरत की हिम्मत की दाद दिए बगैर ना रह सकी। इतनी मार खा के तो पत्थर भी टूट जाएं, मगर सारा जिस्म लहू लहान होने के बावजूद इसका हौसला कितना बुलंद है। चट्टानों से ज्यादा मजबूत, देखने में कमजोर, मगर ईमान में इतनी मजबूत। वो सरदार गुस्से से चिल्लाने लगा, गोया पागल हो गया। अभी मैं तुझे बताता हूं, उसने गुलाम को हुक्म दिया, इस औरत का एक पैर एक ऊंट से बांध दो और दूसरा पैर दूसरे ऊंट से बांध दो। गुलाम फौरी हुक्म की तामील के लिए दौड़ा, जल्दी से दो ऊंट ले आया और इस कमजोर सी औरत के पैर बांधने लगा। अब उसने गुलामों को हुक्म दिया, ऊंटों को मुखालिफ सिमत में चला दो, और एक नेजा फिजा में बुलंद किया। मेरी चीख निकल गई और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरा सारा जिस्म कांप रहा था, मैं पसीने में शराबोर थी, मैं ताब नहीं ला सकती थी ये सब देखने की। मेरे आंसू थे कि टप टप बह रहे थे और मेरी हिचकी बन गई थी। इतना बड़ा जुल्म सिर्फ इस बात पे कि वो कलमा कहने वाली है। मैंने सोचा हम तो अपने जमाने में बड़े आराम से कलमा कहते हैं और बाआवाज़े बुलंद कहते हैं, और किसी की हिम्मत नहीं होती कि हमें कुछ कह सके। तब भी हम कलमे पे जमते नहीं, तब भी इस कलमे की लाज रखने वाले नहीं, तब भी इस कलमे के पैगाम को निभाने वाले नहीं। हमारे लिए इतनी आसानियां, तब भी हमारे बहाने हजार, कभी हालात के, कभी लोगों के, कभी खानदान के और कभी अपनी मजबूरियों के। हमने तो आज तक इस कलमे की खातिर एक थप्पड़ तो दूर की बात टेढ़ी आंख तक बर्दाश्त नहीं की। तब भी इतनी आसानियों के बावजूद हम इस कलमे से जान छुड़ाते फिरते हैं। नहीं चाहते कि कोई हमें मुसलमान दिखाई दे, हमें मुसलमान के तौर पे देखे, हमें मुसलमान समझे, ये जाने कि हम कलमा गो हैं। ये लोग इतनी कुर्बानियां देकर भी इसकी लाज रख रहे हैं, ये लोग अपनी जान देकर भी इससे नहीं हट रहे। और मैं क्या करती हूं? मैंने खुद से फिर सवाल किया, क्या तुम इस जगह पे होती तो ये सब बर्दाश्त कर लेती? जवाब मैं अच्छी तरह जानती थी, इसीलिए मेरे अल्लाह ने मुझे मेरे नबी के वक्त में पैदा नहीं किया, कि वो जानता था कि मैं इस काबिल नहीं थी। उसने वाकई ऐसे लोगों को अपने नबी का साथी बनाया जो डिजर्व करते थे, जो इसके हकदार थे, जो मेरी तरह दोगले नहीं थे, जो मेरी तरह जरा सी मुश्किल के ऊपर भाग जाने वाले भगोड़े नहीं थे, जो जरा टेढ़ी आंख बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, जो जरा किसी की बात नहीं सुन सकते थे। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को मेरे नबी का साथी नहीं बनाया, उसने इन लोगों को चुना। मैंने आंखें बंद कर ली और अब की दफा जब खोली तो मुझे वो ही सरदार नजर आया, वो किसी नौजवान के साथ मक्का की गली में चलता हुआ जा रहा था। सामने से मुझे मेरे नबी आते दिखाई दिए। जब मेरे नबी उसके करीब पहुंचे तो बड़ी नरमी से उससे कहने लगे, ए अबुल हकम, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आ जा, मैं तुझे अल्लाह की बंदगी इख्तियार करने की दावत देता हूं। मैं हैरान थी, मेरे नबी ने उसको अबू जहल नहीं कहा, अबुल हकम कहा, हालांकि ये तो जहालत का बाप, लेकिन उसको अच्छे ही नाम से पुकारा। इसके बावजूद वो आगे से बड़े तकब्बुर से बोला, ए मोहम्मद, हमारे खुदाओं को बुरा भला कहने से बाज आ जा, क्या तुम यही चाहते हो कि हम गवाही दे दें कि तुमने हमें पैगाम पहुंचा दिया? तो सुन लो, मैं गवाही देता हूं कि तुमने अपना काम कर दिया। अल्लाह की कसम, अगर मुझे पता होता कि जो तुम कह रहे हो वो सच है तो मैं तुम्हारी बात मान लेता। मैंने देखा उसकी बात सुन के मेरे नबी के चेहरे पे इस कदर कर्ब था, मैं महसूस कर सकती थी कि आप कितना ज्यादा चाहते हैं कि ये किसी तरह मान जाए, मगर इसकी अकड़ इतनी ज्यादा कि ये कुछ सुनना भी नहीं चाहता। पता नहीं कितने अरसे से मेरे नबी उसको समझा रहे हैं, तभी तो ये कह रहा है तंग आकर कि हमें समझ आ गई है, आपने बता दिया, आपने पहुंचा दिया, हम गवाही देते हैं। मैंने देखा मेरे नबी उसके इनकार पे कितने दुखी हो रहे हैं। पता नहीं आपने कितनी कोशिश की इसको समझाने की, मगर ये अबू जहल है, ये कहाँ मानेगा? ये तो इतना मुतकब्बिर है, मुझे तो अपने जमाने के कुछ लोग याद आ गए जो अबू जहल तो नहीं मगर अच्छे भले मुसलमान होने के बावजूद अगर उनको 2 से 4 दफा अल्लाह रसूल की बात बताई जाती तो कहते, बस करो, तुमने तो अपना काम कर दिया ना, अब हमारी जान छोड़ो, अपनी तबलीग अपने पास रखो। मुझे याद है मुझे कितना दुख होता था अगर कभी कोई ऐसा कह देता था, मैं कितनी अपसेट रहती थी कई दिन तक। और मेरे नबी रोज ऐसी बातें सुनते हैं, रोज ऐसे ही लोगों से उनका वास्ता पड़ता है जो इतनी शिद्दत से मुखालफत करते हैं। मैं तो डर के मारे कभी कभार किसी को कहती थी, तब भी मैं दिल पे ले लेती थी अगर कोई मुझे आगे से कोई बात सुना देता। और मेरे नबी दिन और रात ऐसी बातें सुन रहे हैं और फिर भी अपने काम करने से बाज नहीं आ रहे, फिर भी लोगों को बताते जा रहे हैं। इसी अबू जहल को कितनी दफा बताया होगा जब ही ये आज कह रहा कि मैं गवाही देता हूं कि तुमने अपना काम कर दिया। मेरे नबी ने उसका ये जवाब सुन के आगे से कोई सख्त लफ्ज नहीं फरमाया, सिर्फ एक ठंडी आह भरी। और जैसे कोई बड़ा बेबस होता है, इस तरह से खामोशी इख्तियार करते हुए बगैर कुछ कहे आगे बढ़ गए। उनके जाने के बाद मैंने देखा ये मुतकब्बिर शख्स अबू जहल अपने साथ वाले नौजवान से कहने लगा, अल्लाह की कसम मुझे अच्छी तरह पता है कि ये बात बिल्कुल हक कर रहा है, मगर क्या करूं, मुझे तो बस एक बात रोक देती है इसकी बात मानने से। बनू कुसई ने तमाम एजाजात अपने नाम कर ली, बैतुल्ला की निगबानी से लेके हाजियों को पानी पिलाने से लेके मस्जिद शूरा दारु नदवा की सरपरस्ती तक, सब हमने सब कुछ मान लिया। फिर अस्करी सरबराही का झंडा भी इन्होंने ले लिया, हम वो भी मान गए। इन्होंने जियाफतें की, हमने भी जियाफतें कर दी, हत्ता कि हम और ये बराबर हो गए। अब ये कहते हैं हम में अल्लाह का रसूल है, अल्लाह की कसम अब ये हम कैसे मान जाएं और इसका मुकाबला कैसे करेंगे। मुझे ये सुन के इतना अफसोस हुआ कि तू तो कहता था कि अल्लाह की कसम अगर मुझे पता हो कि जो तुम कह रहे हो वो सच है तो मैं तुम्हारी बात मान जाऊं, तुम जानते हो वो सच कहते हैं फिर भी तुम मानते नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें मेरे नबी के कबीले से हसद है, सिर्फ इसलिए नहीं मानते। मेरे नबी तो वो हैं जो तुम्हारी खैर ख्वाहिश चाहते हैं, मगर तुम कितने बदनसीब हो कि जो तुम्हें तुम्हारी भलाई का पैगाम देते हो, तुम्हें आग से बचाना चाहते हो, तुम्हें हमेशा की कामयाबी दिलाना चाहते हो, तुम उन्हीं को इतना दुख दे रहे हो, उन्हीं की मुखालफत कर रहे हो, उन्हीं के साथ दुश्मनी पे तुले हुए हो, वो एहसान करें और तुम उसका बदला यूं दो। फिर मैंने सोचा ऐसे इंसान का क्या अंजाम हो जो हक को सिर्फ अपने तकब्बुर और बुग्ज की वजह से, हसद की वजह से ठुकरा दे। ये लोग जान के भी अनजाने बन रहे थे। हमारे जमाने में भी तो ऐसे लोग हैं जो जान के भी अनजान बन जाते हैं, जो मान के भी नहीं मानते, मानते हैं कि अल्लाह के सच्चे रसूल हैं मेरे नबी, मानते हैं कि उनके पास अल्लाह का पैगाम आता है, मगर उनकी कोई बात उनको अच्छी नहीं लगती। फर्क यह है कि ये लोग खरा खरा सुना देते हैं कि हम नहीं मानते, और मेरे जमाने में लोग मानने का दावा करते हैं, मोहब्बतों के दावे करते हैं, मगर बात फिर भी नहीं मानते। मैं चलती गई, कुछ दूर जाने के बाद एक बाजार शुरू हो गया। मैंने देखा मेरे नबी लोगों के पास जा रहे हैं और एक एक को अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं, अल्लाह ताला की तरफ बुला रहे हैं। कोई सुनता है तो आगे से हंसने लगता है, कोई सर हिला देता है, कोई ऐसे करता है जैसे उससे किसी मजनून या दीवाने ने कुछ कह दिया, बिल्कुल इग्नोर कर देता है, ऐसी सुनी अनसुनी करता है जैसे किसी ने कोई बात ही ना कही हो। अगर मैं हूं तो अपनी कितनी बेइज्जती महसूस करूं। मैं देख रही थी किसी को मेरे नबी जाके कुछ बताते हैं तो आगे से खरी खरी सुना देता है। ये लोग किस तरह के हैं, ये किस तरह से मेरे नबी के साथ सलूक कर रहे हैं, और मेरे नबी का हौसला कितना ज्यादा है, ऐसा काम तो मैं भी नहीं कर सकती, ये कितना मुश्किल काम है, हर एक के पास जाके उसको दावत देना, एक एक बंदे से बात करना जबकि वो बात सुनना भी नहीं चाहता। मुझे याद है मुझे तो अपनी इज्जत इतनी प्यारी होती है, और मुझे जब ये डर लगता है कि कोई मेरी बात नहीं सुनेगा, तो मैं उसको दावत ही नहीं देती। मुझसे तो अपने जमाने में भी ये काम नहीं होता, मुसलमानों के दरमियान रहते हुए नहीं होता, मुसलमान को दावत नहीं दी जाती कि कहीं कोई मेरा मजाक ना उठा। और मेरे नबी ने ऐसा कभी नहीं सोचा। लोग मजाक कर भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, वो फिर भी अपना काम किए जा रहे हैं। वो अपनी आना का मसला नहीं बना रहे, वो उसको अपनी बेइज्जती समझ के खामोशी से वहां से जा नहीं रहे, वो चलते जा रहे हैं और जगह जगह लोगों के पास खड़े होके उनसे बात कर रहे हैं। जिधर भी देख रहे हैं कुछ लोग इकट्ठे नजर आते हैं, फौरन वहां जाके उनको बड़े अच्छे तरीके से कुरान की आयतें सुना रहे हैं, इस्लाम की दावत दे रहे हैं। ये काम आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई लाउडस्पीकर नहीं जिसपे एक ही दफा सबको पैगाम सुना दिया जाए, ना ही कोई सोशल मीडिया जिसपे एक दफा पैगाम नशर कर दिया जाए, ना कोई टीवी है जिसपे आके एक दफा ही अपनी बात कह दी जाए। कितना मुश्किल है इस गर्मी में ऐसे लोगों के पास जाना जो नाकदरे हैं, जिनको इस पैगाम की कोई कदर नहीं, जिनको मानना नहीं है, जो सुनी अनसुनी कर रहे हैं। कोई कोई इक्का दुक्का बात सुन भी लेता है, मगर अक्सरियत तो आगे से तहकीर आमेज लहजे में यहां तो मजाक करने लगती या हंसने लगती। मुझे इतनी बेइज्जती फील हो रही थी, दिल कर रहा था मैं अपने नबी को रोक दूं कि दफा कर दें इनको, जाने दें इनको जहन्नुम में, ये इसी काबिल है। हर अपने जमाने में तो मैं ऐसा ही करती हूं, मगर मेरे नबी की खैरख्वाही का अंदाजा आज मुझे हो रहा था। उनको अपनी परवाह नहीं थी, उनको कितनी हिर्स थी कि कहीं ये लोग आग में ना चले जाएं। मैं देख रही थी आप उनके भले के लिए उनको समझा रहे थे, हर तरह से कोशिश कर रहे थे उनको कायल करने की, मगर वो आगे से कुछ सुनने को तैयार ना थे। कभी मैंने अपने नबी का ये उस्वा भी अपनाया, कभी इस सुन्नत को भी मैंने जारी करने की कोशिश की, कभी भी नहीं, इसलिए कि मुझे मेरी इज्जत बड़ी प्यारी थी, इसलिए कि मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकती थी, क्योंकि मैं एक खुद गर्ज उम्मती थी और मेरे जैसे लाखों मुसलमान भी जो मेरे जमाने में रहते थे। मगर मेरे नबी जो रहमतुल आलमीन है वो ऐसे नहीं थे, और ऐसा नहीं कि उनको कोई फीलिंग नहीं थी, ऐसा नहीं कि उनको दुखी नहीं होता था, ऐसा नहीं कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, और ऐसा भी नहीं कि उनको पता ही नहीं चलता था कि उनकी बेइज्जती की जा रही है, उनके चेहरे से सब आया था। मगर लगता है कि लोगों की खैरख्वाही इससे कहीं ज्यादा थी जो उनको मजबूर करती थी कि वो पैगाम देते ही जाए। कोई भी दूसरा होता तो परवाह ना करता, दिल बर्दाश्ता हो जाता और इन लोगों को इनके हाल पे छोड़ देता, मगर वाकई नबियों के दर्जे बुलंद ऐसे ही तो नहीं। इनके इम्तिहान कितने मुश्किल हैं, इनका हौसला कितना बड़ा है, इनका सब्र कितना ज्यादा है कि लोगों की ऐसी बेकार और घटिया बातों को सुन के भी सह जाना। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी अपने दीन की खातिर लोगों की इससे बहुत थोड़ी भी कोई बात सुनी हो, इससे बहुत कम भी कभी सुना हो। मैं देख रही थी इनमें से अक्सर लोगों में बहुत घमंड था। वो खुद को बहुत बड़ी चीज समझ रहे थे, अपनी तो जरा जरा सी सखावत को उछाल उछाल के बता रहे थे कि उन्होंने गरीबों मिसकीनों पर कितना खर्च किया, उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी मेहमान नवाजियां की, कितनों को खाना खिलाया। और ऐसे लोग जो इतने मुतकब्बिर हों वो कहाँ मानेंगे, जो अपने आप को इतना बड़ा नेक समझते हों वो कहाँ कुछ समझेंगे। उनमें से एक मेरे नबी से बोला, आप तो गुलामों के साथ रहना पसंद करते हैं, हमें तो बड़ी शर्म आती है इस बात से। मैं सोच रही थी एक इंसान खुद को इतनी बड़ी चीज समझता है कि उसके लिए ये लोग इतने हकीर हैं। ये शायद कोई सरदार था, और शायद हर जमाने के लोगों में यही बीमारी होती है कि वो कुछ लोगों को जो कम मालदार होते हैं बहुत नीचा समझते हैं, ना उनके साथ बैठना पसंद करते हैं, ना उनको अपनी दावत पे बुलाना पसंद करते हैं, ना उनसे मेलजोल रखते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके पास माल नहीं होता। चुन चुन के एक-एक बीमारी वो ही तो है जो मेरे जमाने में भी है और इस जहालत के जमाने में भी है। सिर्फ एक जुबानी कलमा पढ़ने के बाद मेरे जमाने के लोग समझते हैं कि वो बहुत बड़े पक्के मुसलमान हो गए, जबकि एक भी रंग इस्लाम का उनमें नजर नहीं आता। उनकी जिंदगियां तो सिर्फ इस जाहली जमाने से मुमासलत रखती हैं। मैं हैरान थी, दोनों जमानों में कोई फर्क नहीं, लोगों की सोच भी वही और कदरें भी वही। इतने में वही सुर्ख सफेद रंगत वाला शख्स ऊंचा ऊंचा बोलता हुआ कहीं से नमूदार हो गया, लोगों इसकी बात ना सुनना, ये बेदीन हो गया, ये मेरा भतीजा है, ये बेदीन है, इसकी बात ना सुनो। उसका इशारा मेरे नबी की तरफ था। मैंने सोचा अब क्या कमी रह गई थी कि ये भी आ गया। मैंने अपना सर पकड़ लिया, फ्रस्ट्रेशन की इंतहा हो गई, इतना स्ट्रेस, इंसान क्या करे, कहीं तो कोई पॉजिटिविटी नजर आए। जिधर देख रही हूं उधर सब एक मेरे नबी के पीछे पड़े हैं, वो अकेले किस किस का मुकाबला करें। मैं सोच रही थी मैं इतने स्ट्रेस में आ गई, इन पे क्या गुजरती होगी। ये वक्त आसान नहीं था, हर तरफ मुखालफत ही मुखालफत नजर आ रही थी। एक इंसान कैसे सब कुछ बर्दाश्त करता होगा। मेरे नबी खामोशी से बाजार से अपना काम करके निकल गए। यहाँ तक का आज का एपिसोड है, इंशाअल्लाह ताला कल एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे।